मेरे प्यारे साथियों नमस्कार। आज 10 अक्टूबर 2017 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट के विषय के बारे में फैसला करते समय मुझे एक नया शब्द याद आया और मुझे लगा कि केवल इसी शब्द पर आज बात करनी चाहिए। लेकिन यह जो शब्द है नया जरूर है, लेकिन आप कह सकते हैं कि कल जिस विषय पर मैं बात कर रहा था यह उसी के कंटिन्यूएशन में है और मुझे इस बात की बेहद खुशी है। इनफैक्ट सच कहूं तो बहुत ही ज्यादा खुशी है कि कल के विषय पर मुझे बहुत अच्छे सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं। मैं सच पूछे तो उम्मीद नहीं कर रहा था कि इतनी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं श्रम की गरिमा के बारे में मिल सकती हैं, क्योंकि हमारी चेतना उस तरीके की है नहीं। ये बात अलग है कि हमारा दर्शन शास्त्र उसी तरह का रहा है, हमारी संस्कृति उसी तरह की रही है और सच पूछे तो ये संपूर्ण पर्यावरण भी उसी तरह का है। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि हमारा मनोविज्ञान इन सबसे निर्मित नहीं हो सका है, बल्कि सच पूछे तो इसके बिल्कुल विरोध में खड़ा है। तो मित्रों, चूंकि बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं आप सबकी रही हैं इस विषय पर, तो इसीलिए उससे उत्साहित होकर के मैंने सोचा कि नहीं, इस विषय को और आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि यह हमारे जीवन के केंद्र में है। मित्रों, आज के इस विषय को मैं नाम देना चाहूंगा हस्तदेव। हस्त का मतलब आप जानते हैं हाथ, और देव का मतलब आप जानते हैं बहुत अच्छे से जानते हैं देवता, ईश्वर भी आप कह सकते हैं। तो हस्त देवता आप और अच्छे सरल शब्दों में इसे कह सकते हैं। तो मैं आज थोड़ा सा हस्त देव पर बात करूंगा, और सच पूछिए तो बात क्या करूंगा, हस्त देव के माध्यम से मैं अपने उस श्रम की गरिमा वाले ही विषय को और आगे बढ़ाना चाहूंगा और अलग तरीके से थोड़ी अपनी बात आप सबके सामने मित्रों रखना चाहूंगा, थोड़ी एकेडमिक तरीके से भी। फ्रेंड्स, ऋग्वेद हमारी संस्कृति का या मानवीय चिंतन का आरंभिक ग्रंथ है ना। इसे कुछ लोग देव ग्रंथ ही मानते हैं, मतलब इतना सम्मान ऋग्वेद का है, राइट। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट यह है कि ऋग्वेद के बारे में हम सब जानते नहीं हैं। हम जो कुछ भी जानते हैं वो सच पूछे तो ऋग्वेद के बाद जो वेद आए, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, और इसके बाद पुराण, और इसके बाद आरण्यक, और इसके बाद ब्राह्मण, ये जो ग्रंथ आए इनके बारे में हम जानते हैं और खूब जानते हैं, कुछ शायद जरूरत से ज्यादा ही जानते हैं। और मुश्किल यह है कि इनको जानते हुए ही हम इस भ्रम में जीने लगते हैं कि हम तो ऋग्वेद को भी जानते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच पूछिए तो ये बाद में जो वेद लिखे गए हैं, ये कहे जरूर वेद जाते हैं लेकिन और है ऋग्वेद के श्रृंखला के ही ग्रंथ हैं, उनकी विवेचना में लिखे गए, उनकी व्याख्या में लिखे गए, जिसे हम भाष्य कहते हैं। लेकिन इनफैक्ट जो आत्मा ऋग्वेद की है वह धीरे 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 इनमें परिवर्तित होती गई है। मित्रों, वैसे एक बात है ही कि जो विचार होते हैं वो लगातार परिवर्तित होते रहते हैं, और इसी परिवर्तन को हम विकास भी कहते हैं। तो ऐसा होता भी है, क्योंकि जो दर्शन शास्त्र होता है वो कभी भी हमारी सामाजिक आवश्यकताओं से भिन्न नहीं होता। हम देखते हैं कि अभी हमें किस चीज की जरूरत है और उसी के अनुकूल फिर जो हमारे फिलोसफर्स हैं, जो हमारे थिंकर्स हैं, विचार करते हैं और अपनी बात रख देते हैं। जो ऋग्वेद है मित्रों, सच पूछिए तो ऋग्वेद प्रकृति का वेद है, प्रकृति का शास्त्र है, यानी कि जो एक विशुद्ध प्रकृति होती है, जो विशुद्ध हमारी चेतना होती है, जो विशुद्ध मानव होता है, उसकी अभिव्यक्ति है। आप देखिए कि ऋग्वेद में किस तरीके की प्रार्थनाएं की गई हैं, बड़ी स्पष्ट प्रार्थनाएं हैं कि हे सूर्यदेव, हे मरुत, हे इंद्र, इस तरह की प्रार्थनाएं हैं। और जो आराधना भी की गई है, जो चीजें भी मांगी गई हैं, वो समृद्धि के लिए मांगी गई हैं, समृद्धि के लिए मांगी गई हैं। और केवल मांगी ही नहीं गई हैं, बल्कि उसमें आप और भी गंभीरता से देखेंगे, जो मैंने महसूस किया है वो सक्षमता की बात कही गई है। मतलब ये नहीं कहा गया है कि तुम मुझे ये दे दो, नॉट एट ऑल, तुम मुझे दो कि मैं ये खुद इन्हें प्राप्त कर सकूं। जैसे अगर वो कहते हैं कि मेरे गाय के थनों में दूध अधिक आए, या मेरा जो पुत्र है वो बलिष्ठ बने, ताकतवर बने, तो मालूम है वो क्या मांगते हैं। वो कहते हैं कि हे इंद्र, तुम वर्षा करो, ताकि, अब आप देखिए कि वर्षा करो ताकि खूब चारा पैदा हो, तो उससे गाय के थनों में दूध ज्यादा आएगा और उन थनों में आए हुए दूध को पीकर मेरा जो पुत्र है वो बलिष्ठ बनेगा, और जब बलिष्ठ बनेगा तो मुझे समृद्धि की प्राप्ति होगी। आप देख रहे हैं, वो कारण की मांग कर रहे हैं कि मुझे वो जो कारण इनके हो सकते हैं वो उपलब्ध कराओ। इस तरह की प्रार्थनाएं हैं जो सच पूछिए तो शायद जल्दबाजी में या हम समझना ही नहीं चाहते, हमसे चूक जाती हैं। मित्रों, ऋग्वेद में एक बहुत बहुत गजब की लाइन है। लाइन क्या, चार शब्द है, मात्र चार शब्द है। मैं वो आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा और फिर मैं बाद में जो उसके पांच शब्द हैं वो भी रखना चाहूंगा, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मैं ये बात इसलिए आप लोगों के सामने रख रहा हूं, मैं तो उदाहरण दे रहा हूं, थोड़ी सी चीजें एकेडमिक हो जाती हैं, थोड़ी सी भारी भी हो जाती है, मैं जानता हूं, लेकिन हम सब ये भी तो जाने कि हमारे जो पूर्वज है, जो आरंभिक पूर्वज है, जो हमारी चेतना है, जो आरंभिक चेतना है, वो कैसे सोचती थी, तब तो हम समझ पाएंगे कि सच में हम क्या हैं। अदरवाइज तो आज हम बिल्कुल बदले हुए रूप में हैं, और उस पर यकीन नहीं होता कि हम बदले हुए रूप में हैं, तो हम कम से कम अपनी समीक्षा तो सही तरीके से कर सकें, तो उन तथ्यों को तो जानें जो हमारे लिए कसौटी का काम करेंगी। देखिए, ऋग्वेद में क्या चार शब्द कहे गए हैं, कौन से चार शब्द हैं? अयम, मे, हस्तो, भगवान। यह मेरा हाथ भगवान है, यह मेरा हाथ भगवान है। मित्रों, हाथ भगवान है, हाथ ही मुझे भाग्यवान बनाएगा, आप कह सकते हैं। हाथ से मैं जो कुछ भी करूंगा, जैसा भी करूंगा, मुझे उसी तरह के प्रतिफल मिलेंगे, और उसे ही मैं भगवान की देन मानूंगा, भगवान की कृपा मानूंगा, भगवान का आशीर्वाद मानूंगा। यानी कि जो कुछ भी होगा वह मेरे हाथों के द्वारा ही होगा, और हम सबको प्रकृति ने, या अगर ब्रह्म कोई है तो उसने ऑलरेडी हाथ देकर धरती पर भेज रखा है, और जो हर समय हमारे साथ है, भगवान हर समय हमारे साथ है। जरूरत किस बात की है ये आप जानते हैं। इसके बाद आप देखिए कि आगे क्या कहा गया है, बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा गया है। मित्रों, ये मेरे शब्द नहीं है, मेरे शब्द तो हो सकता है स्वार्थ से प्रेरित हो, अज्ञानता से प्रेरित हो, अपना निजी विचार हो, लेकिन ये तो मैं मानव जाति, जो आरंभिक मानव जाति हमारी रही है, उसके विचार आपके सामने रख रहा हूं। अगले पांच शब्द हैं फ्रेंड्स, नरिते श्रांतस्य सख्याम देवा। हिंदी में इसका अर्थ होगा, श्रम किए बिना देव मनुष्यों के मित्र नहीं होते। श्रम किए बिना देवता मनुष्यों के मित्र नहीं होते, यानी कि अगर हमें देवताओं को, जो समृद्धि देने वाले हैं, जो अलग अलग तरह की हमारी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं, वो तभी हमारे मित्र बनेंगे। इसे दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं, वो तभी हमारी कामनाओं को पूरा करेंगे। मित्र की तो हम इच्छा पूरी करते हैं ना, सीधी सी बात है, तो हमारी कामनाएं तभी पूरी होंगी जब हम श्रम करेंगे, सीधी सी बात है। और देखिए, जिस युग में यह बात कही गई है, बट नेचुरल है कि वो श्रम प्रधान युग था, और श्रम किसके माध्यम से किया जा सकता था, केवल हाथों के माध्यम से। तो फिर यह बात सीधे सीधे जुड़ जाती है, अयम मे हस्तो भगवान, कि ये मेरे हाथ ही मेरे भगवान हैं। मित्रों, मुझे याद है कि पांचवी छठवीं में जब हम लोगों ने संस्कृत पढ़ना शुरू ही किया था, तो उस समय संस्कृत के भी कुछ नीतिगत श्लोक कोर्स में हुआ करते थे, हिंदी साहित्य में भी हुआ करते थे और संस्कृत में भी हुआ करते थे। वो संस्कृत के का एक श्लोक लगातार मेरे दिमाग में कौंधता रहता है और आज भी बहुत तरोताजा है, कि उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। ये बचपन में कुछ चीजें डाल दी जाती हैं, तो ये आप समझ लीजिए कि आपकी चेतना में कुछ ऐसा रच बस जाते हैं कि फिर इनसे छुटकारा पाना जरा सा मुश्किल हो जाता है, और जरूरत भी नहीं। अगर अच्छी चीजें रच बस गई हैं तो हम क्यों छुटकारा पाना चाहते हैं। देखिए, इसका अर्थ क्या है, उद्यमेन ही सिद्धन्ते, उद्यम करने से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है, यानी कि कोई भी कार्य सफल होता है, उद्यमेन ही सिद्धन्ति। और विरोध में क्या कह रहे हैं, कार्याणि न मनोरथे, केवल इच्छा करने से कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। कार्याणि न मनोरथे नहि सुक्तस्य सिंहस्य, अगर एक शेर ही क्यों न हो, शेर सबसे शक्तिशाली जीव, जंगल का राजा, शेर ही क्यों न हो, नहीं सुप्तस्य सिंहस्य, अगर वो सोया हुआ है, लेटा हुआ है, श्रम नहीं कर रहा है, प्रविशंति मुखे मृगा, तो ऐसा नहीं होगा कि कोई हिरण अपने आप आकर के उसके मुंह में प्रवेश कर जाए, घुस जाए कि ले भैया तू खा ले मुझे और अपना पेट भर ले, चाहे वो शेर ही क्यों न हो, राजा ही क्यों न हो, सबसे शक्तिशाली जंतु ही क्यों न हो, कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, मेरे सामने 56 व्यंजनों से सजी हुई सोने की थाली रखी हुई है, सोने की थाली है और उसमें 56 व्यंजन सजे हुए हैं, और मेरी खूब इच्छा है, जबरदस्त इच्छा है, प्रबल इच्छा है कि मैं इसका भक्षण करूं, इसे खाऊं, खूब अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जबरदस्त अट्रैक्शन की, हे भगवान मैं कैसे इसे खा जाऊं और जल्दी से जल्दी खा जाऊं, और मैं भूख के मारे बिलबिला रहा हूं, तिल मिला रहा हूं, राइट? आप मुझे बताइए कि क्या सच में यह संभव है, मैं लेटा हुआ हूं और मेरे बगल में वो व्यंजनों की से भरी हुई सोने का थाल रखा हुआ है और उसमें से खीर पूरी या छोटा सा तिनका भी खुद तैरकर, उड़कर यानी कि हवा में तैरकर मेरे मुंह में आ जाएगा, आ सकता है क्या? और मेरा खूब अट्रैक्शन है, बहुत ही जबरदस्त अट्रैक्शन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहां काम नहीं कर रहा है, यहां कौन काम करेगा? अयम मे हस्तो भगवान, अगर मैं अपना हाथ बढ़ाऊंगा, अपनी उंगलियों में पूड़ी के छोटे से टुकड़े को फंसाऊंगा और उसे मुंह तक ले जाके मुंह खोल करके उसमें डाल दूंगा, तो ये जो मेरा हाथ है भगवान बन जाएगा, फिर मुझे अट्रैक्शन की जरूरत नहीं है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रतीक्षा करने की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, चाहे मैं शेर ही क्यों न हूं, उद्यम तो मुझे करना ही पड़ेगा। तो मित्रों, आज की इस बात को मैं अब यहीं समाप्त करता हूं। शायद मैंने अपनी बात थोड़ी सी एकेडमिक तरीके से शुरू में ही मैंने कहा था कि कहने की कोशिश की है, कुछ उदाहरण दिए हैं ताकि आपको कुछ ज्यादा यकीन हो सके, क्योंकि जो प्राचीन हमारे जो ऋषि मुनि चिंतक रहे हैं, जब हम उनकी बातों को सुनते हैं तो लगता है कि नहीं, उन्होंने बहुत सोच समझ कर बात कही होगी, बहुत प्रज्ञा से पूर्ण बातें कही होंगी, तो हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो विश्वास है, उन शब्दों के प्रति ज्यादा गहरा हो जाता है, और जब ऐसा होता है तो फिर वो शब्द असर भी करते हैं। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस लाइफ मैनेजमेंट को मैं यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।